हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, और यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, और मैं खुद ही यहाँ पर फंस गया हूँ। क्या करूँगा मैं? अपनी अंगूठी से निकलती हुई रोशनी की चमक में विक्रांत के दादाजी ने चारों तरफ आसपास देखा, और वहाँ पर उसे गड्ढे में मौजूद वो सारे शैतानी अजीब से दिखने वाले जानवर, सांप, बिच्छू, उनकी तरफ ही घात लगाकर बैठे हैं। लेकिन उनके रक्षा घेरे में होने की वजह से वो लोग उन पर सीधे हमला नहीं कर पा रहे हैं। तभी वहाँ पर एक तेज आवाज गूंजी, ठाकुर, कहाँ हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? महात्मा गुरुजी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि अपने दोस्त की पुकार के बाद वो तुरंत आश्रम से निकल गए थे, और उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि उनका मित्र किसी बहुत ही बड़े खतरे में है। क्योंकि जब तक खतरा छोटा मोटा हो, वो खुद ही उसका सामना कर सकते हैं, इतनी शक्तियाँ तो उनके पास भी है। लेकिन जब कोई बड़ी मुसीबत आती है या फिर जान पर बनी होती है, बस तभी वो महात्मा को याद करते हैं, क्योंकि महात्मा की शक्तियाँ ठाकुर से कहीं ज़्यादा हैं, और उन्हें उन सब चीज़ों में महारत हासिल है जहाँ तक ठाकुर नरेंद्र कभी पहुँच भी नहीं पाए हैं। अपने मित्र की आवाज़ सुनकर ठाकुर की आंखों में एक अलग ही चमक नज़र आई, और झाड़ियों के पीछे बनी उसे पत्थर की गुफा के अंदर वाले गड्ढे में गिरे हुए उन्होंने तेज़ आवाज़ में चिल्लाया, क्योंकि जहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है वो उसी जगह पर नहीं आ सकते, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ जहाँ पर फैली हुई होती है उसके भीतर की जगह उन्हें ठीक समझ नहीं आती। ठाकुर नरेंद्र प्रताप ने तेज़ आवाज़ में चिल्लाया, मैं यहाँ पर हूँ, इस गुफा के अंदर, बचाओ मुझे। महात्मा मणिकनाथ बड़े ही आराम से अपने बचपन के मित्र की आवाज़ को पहचान गए, क्योंकि इस आवाज़ से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, और उन्हीं के बुलाने पर वो यहाँ तक आए भी हैं। महात्मा ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद की और ध्यान से उस आवाज़ को सुना, और आवाज़ को एकदम ध्यान से सुनते ही उन्हें समझ आ गया कि वो आवाज़ किस तरफ से आ रही है। इसलिए तुरंत ही वो अपने पीछे मुड़े और उस आवाज़ की तरफ ही बढ़ने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके दोस्त ठाकुर आखिर यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे, लेकिन इन सब बातों के बारे में सोचने का भी वक्त नहीं। अभी पहले उन्हें बचाना ज़रूरी है, और उन्हें पता नहीं वो किसी मुसीबत में हैं। वो पीछे झाड़ियों के पीछे छुपी हुई गुफा की तरफ बढ़े, और उन्हें जैसे ही वो गुफा नज़र आई वो एकदम ही उस तरफ नहीं बढ़े। उन्होंने पहले आंख बंद की और अपने हाथ को सामने की तरफ किया, जिससे कि एक सुनहरी रोशनी वहाँ पर सारी जगह पर फैल गई, जिससे कि उन्हें सब कुछ एकदम साफ नज़र आने लगा, उस पत्थर के आर पार भी। और उसे देखते हुए महात्मा ने अपनी आंखें खोली और उन्हें सब कुछ समझ आ गया। महात्मा ने तुरंत ही आगे अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाया, जिससे कि वो काली शक्तियों के रास्ते में ना आएं और उन पर उन काली शक्तियों का कोई भी असर ना हो, और जिस खतरे में ठाकुर नरेंद्र प्रताप फंसे हुए हैं वो उससे बच जाएं। और फिर वो उस गुफा के अंदर गए, और जहाँ पर वो गड्ढा था वो उसके ऊपर ही आ गए, लेकिन वो गड्ढे में नहीं गिरे, वो अपनी शक्तियों की मदद से उस गड्ढे के ऊपर हवा में ही तैर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि विक्रांत के दादाजी सारे जानवरों से घिरे हुए हैं, और उनमें से एक बहुत ही बड़ा जहरीला सांप उनके एकदम नज़दीक पहुंच गया है, क्योंकि उनका रक्षा कवच एकदम कमज़ोर होकर टूट गया था और उनकी शक्तियाँ भी एकदम कम हो गई थीं, और वो बड़ा सा जहरीला सांप बस ठाकुर पर हमला करने ही वाला था कि तभी महात्मा ने तुरंत ही उन सारे जहरीले जीवों पर अपनी शक्तियों से वार किया, और वो सब एकदम ही काला धुआं बनकर वहां से गायब हो गए। और फिर आगे बढ़कर उन्होंने नरेंद्र प्रताप का हाथ पकड़कर उन्हें उस गड्ढे से बाहर निकाला और उन्हें लेकर वहां से बाहर आए। ठाकुर, ठाकुर, तुम ठीक तो हो ना? महात्मा ने ठाकुर का हाथ पकड़ते हुए कहा और उन्हें वहां जमीन पर ही लिटा दिया, क्योंकि इतनी देर से उन्हें शैतानी शक्तियों के बीच रहकर उनसे लड़ने की वजह से ठाकुर अब बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था, और ये बात महात्मा को भी समझ आ गई। ठाकुर ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, हाँ, ठीक हूँ मैं, शुक्रिया मेरे दोस्त, एकदम सही वक्त पर आकर मेरी जान बचाने के लिए, नहीं तो आज मेरा ये दुनिया में शायद आखिरी दिन होता। ठाकुर का हाथ पकड़कर सहारा देते हुए महात्मा ने उन्हें उठाते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश तो हमारे रहते पूरी नहीं हो सकती, लेकिन ये बताओ, तुम यहाँ पर ऐसी खतरनाक जगह करने क्या आए थे? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि ये जगह हमारी शक्तियों के लिए ठीक नहीं है। उस गहरी काली रात का अंधेरा अब छंट रहा था और आसमान में हल्की हल्की सी रोशनी चारों तरफ नजर आने लगी है, लेकिन पिछली रात से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ उन सब चीजों की गवाही वहां राजमहल के चारों तरफ घायल और मरे हुए बड़े सैनिकों और लोगों की लाशों से नजर आ रहा है। वहां महल के किनारे नदी का पानी भी एकदम लाल हो चुका है, क्योंकि न जाने कितने लोगों के घाव से निकलता हुआ रक्त उसे नदी के पानी में जाकर मिल गया है। इसके अलावा कितनी सारी लाशें पानी में तैर रही हैं और नदी के दोनों ही तरफ उसी तरह सिपाही, सैनिक घायल और बेजान पड़े हुए हैं। उनमें से कुछ की मौत तो इस वक्त हो गई, लेकिन कुछ अभी भी दर्द से कराह रहे हैं और जिंदा बचने की उम्मीद में अभी भी उनकी सांसें चल रही हैं। राजा भी वहां राजमहल के बाहर ही बेहोश होकर पड़े हुए हैं, लेकिन तभी सेनानायक को होश आया तो वो सबसे पहले राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को होश में लाने की कोशिश की और वो बहुत ही घबरा गया। ये सोचकर कि कहीं महाराज को कुछ न हो जाए, उसने आसपास के सैनिकों की मदद से महाराज को महल के अंदर पहुंचाया। महल के अंदर भी वही हाल है। विक्रांत के रास्ते में जो कोई भी आया उसने किसी को भी नहीं छोड़ा और वहां पर पूरे रास्ते में सैनिक, मंत्री और सिपाहियों, जो भी उसके रास्ते में जिसने भी आने की कोशिश की, उन सभी को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दूसरी तरफ महल के अंदर, भले ही वो काली रात बीत चुकी है और विक्रांत वसुंधरा को वहां से लेकर जा चुका है, लेकिन वीरेश अभी भी एकदम सदमे में अपना सिर पकड़कर वहां जमीन पर ही बैठा हुआ है। उसके आसपास ही उसके सारे दोस्त भी हैं और कमरे का दरवाजा भी खुल चुका है, लेकिन रानी ने अभी भी चंद्रिका को वहां से बाहर नहीं जाने दिया और चंद्रिका को समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग उसे क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा तो वहां से चली गई है। वहां पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। कोई कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है और जितने भी लोग जिंदा और सही सलामत बचे हैं वो बाकी लोगों को मदद और उपचार के लिए लेकर जा रहे हैं। वीरेश के कंधे पर हाथ रखकर सक्षम ने उसे समझाते हुए कहा, चलो हमें सबकी मदद करनी होगी वायर, जो भी लोग बचे हैं, क्योंकि अब जो हो गया वो तो हो गया, उसके पीछे रोने से कोई भी फायदा नहीं है। सक्षम की बात सुनकर वीरेश ने एक नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो सक्षम, तुम्हें नहीं पता मेरे लिए ये कितनी बड़ी बात है। आज पहली बार गुरुजी का दिया हुआ कोई काम मैं पूरा नहीं कर पाया और मेरी आंखों के सामने वो शैतान राजकुमारी को यहाँ से ले गया और मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। इससे अच्छा होता कि वो मुझे मार ही देता, कम से कम तो ये बेबसी और शर्मिंदगी मुझे नहीं झेलनी पड़ती। कैसे सामना करूंगा मैं महाराज और गुरुजी का, मैं उनकी बेटी को, राजा की राजकुमारी को बचा नहीं पाया, जिसके लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा था मैं वही करने में असफल हो गया, तो क्या मतलब है मेरी जिंदगी का।
बहुत ही पछतावे के साथ आंसू भरी आंखों में वीरेश ने ये सारी बातें कहीं और उसकी आंखों में आंसू इस तरह से ही भरे हुए जैसे कि वो बस कभी भी रो देगा, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश में बस रो नहीं रहा है। वीरेश की ये बात सुनकर सक्षम चुप हो गया और अपने साथ खड़े बाकी लोगों का मुंह देखने लगे। कहानी जारी रहेगी।